12 सितंबर दिन शनिवार के नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। मक्का की अल हरम मस्जिद में क्रेन हादसा, 107 की मौत, 240 जख्मी। चलेंगे सऊदी अरब, जानेंगे कैसे और कब हुआ हादसा, कहां है वो मस्जिद। भारत प्रशासित कश्मीर में गोवध और गोमांस की बिक्री पर लगी रोक के खिलाफ बंद। भोपाल में जारी विश्व हिंदी सम्मेलन विवादों के घेरे में।
केवल या तो अफसर दिख रहा है या नेता दिख रहे हैं। आज भी समाचार पत्र में ये रिपोर्ट छपी है, मंच पर केवल राजनेता है, एक भी साहित्यकार नहीं।
सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। सऊदी अरब के शहर मक्का में शुक्रवार दिन में हुए हादसे में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है, जबकि इसमें 240 लोग घायल हैं। मशहूर अल हरम मस्जिद की छत पर क्रेन की गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक घायलों में 9 भारतीय भी शामिल हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने कहा है कि यूरोपियन संघ को सीरिया की आर्थिक मदद करनी चाहिए और उसे $3 अरब यानी कि करीब 75 अरब रुपए देने चाहिए, जिससे कि वो अपने यहाँ के विस्थापित लोगों की मदद कर सकें। जर्मनी के एक अखबार को दिए साक्षात्कार में उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की, लेबनान और जॉर्डन की मदद की जाए तो यूरोप की तरफ से आ रहे शरणार्थियों की संख्या में कमी आएगी। कर्नाटक के गुलबर्गा में हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 घायल हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
यह हादसा हुआ करीब 2:40 को, जब ट्रेन की कोच बी 7 से ट्रेन डिरेल हो गई। गुलबर्गा के स्टेशन मैनेजर रमना राव का कहना था कि ट्रेन की पैंट्री और उसको लगी हुई 3 टायर की कोच ज्यादा डैमेज हुई है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने जो कोचेस पटरी से निकल गई थी उनको वापस पटरी पर चढ़ा दिए हैं। गुलबर्गा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित सिंह का कहना था कि जख्मी पैसेंजर को हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने यूएस ओपन के मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये मैच 6-4, 3-6, 10-7 से अपने नाम किया। 1969 के बाद ये पहला मौका है जब मिश्रित युगल वर्ग में किसी जोड़ी ने एक ही साल में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हों। लिएंडर पेस के लिए यह 17वां खिताब है। वहीं सानिया मिर्जा और हिंगिस रविवार को ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलकुआ और कजाकिस्तान की यूरोस्लावा श्वेदोवा के खिलाफ महिला युगल का फाइनल खेलेंगी। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने उससे अपील की है कि वो उसे पूर्व राष्ट्रपति लुइस इंसियो लूला डा सिल्वा से पूछताछ करने की इजाज़त दें। डा सिल्वा पर आरोप है कि वो सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार में शामिल थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास डा सिल्वा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें शक है कि डा सिल्वा ने पद पर रहते हुए तेल कंपनी के जरिए खुद को या अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाया है। सर्बिया की सीमा के नज़दीक हंगरी के रोशकी शरणार्थी शिविर में प्रवासियों से अमानवीय व्यवहार का फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहा है कि शिविर में शरणार्थियों पर खाने से भरे बैग फेंके जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया ग्रीन पार्टी के एक नेता की पत्नी और कैंप में सहायक कर्मी के तौर पर मौजूद मिकेला और पत्रकार क्लॉस कफनर ने यह वीडियो बनाया है। मिकेला ने कहा कि उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है और हम उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा है, स्वागत है आपका। कल यानी जुमे की शाम मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल काबा के पास की एक मस्जिद पर एक क्रेन जा गिरा, जिसमें 107 लोगों की मौत हो गई है और 240 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये क्रेन वहां कुछ दिनों पहले तक हो रहे निर्माण के कामों के लिए खड़े थे। शाम में आंधी और तेज बारिश के बीच में ये विशालकाय क्रेन गिरा और मस्जिद की छत को तोड़ते हुए भीतर घुस गया। भवन का मलबा पास के इलाके तक फैल गया। पूरा ब्यौरा सुने अमल चौधरी से।
सऊदी अरब के शहर मक्का में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर अब 107 हो गई है, जबकि 240 लोग घायल हैं। दुर्घटना मशहूर अल हरम मस्जिद की छत पर क्रेन के गिरने की वजह से हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक घायलों में 9 भारतीय भी शामिल हैं। लाल रंग की वो क्रेन जब दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद पर गिरी तो वहाँ नमाजी मौजूद थे। मुल्क के नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेज बारिश और हवाओं की वजह से यह हादसा हुआ। सऊदी नागरिक रक्षा विभाग के प्रमुख सुलेमान अल अम्र कहते हैं, यहाँ 35 से 40 mm के करीब बारिश हुई और आंधी में बहुत तेज चल रही थी। मौसम विज्ञान और पर्यावरण विभाग से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आंधी की रफ्तार करीब 83 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ तक उखड़ गए। आंधी की ही वजह से क्रेन भी नीचे आ गिरी जिसके चलते ये हादसा हुआ। मक्का में धूल भरी आंधी और तेज बारिश के अलग अलग समय पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार ये थोड़ी जल्दी आ गए। साथ ही आसपास निर्माण की भी कई परियोजनाएं चल रही थीं। अभी तो यही थ्योरी है कि तेज आंधी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सऊदी नागरिक रक्षा विभाग के प्रमुख सुलेमान अल अम्र के शब्द। सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरों और वीडियो में खून से लथपथ लोग दिखाई दे रहे हैं। क्रेन का हिस्सा गिरकर मस्जिद की छत तोड़ते हुए भीतर घुस गया। सऊदी प्राधिकरण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि हादसे की असल वजह क्या थी, लेकिन हादसे की तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाल रंग की एक क्रेन का बड़ा हिस्सा मस्जिद के अंदर गिरा है। मक्का में फिलहाल हज की तैयारियां चल रही थीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि जेद्दा में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास ने मक्का में हुए हादसे पर नज़र बनाई रखी है। उनके अनुसार इस घटना में 9 भारतीयों के घायल होने की भी खबर है। उन्होंने ट्वीट किया कि वरिष्ठ भारतीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और भारतीय डॉक्टरों को भी सभी सरकारी अस्पतालों में भेजा गया है और अधिक जानकारी का इंतजार है।
मैंने कुछ ही देर पहले बात की सऊदी अरब के शहर जिद्दा में अंग्रेजी अखबार के सीनियर एडिटर सिराज वहाब से, जो कुछ ही देर पहले 80 किलोमीटर दूर बसे मक्का से वापस आए थे। और सिराज वहाब से मैंने पहला सवाल किया कि आखिर हादसा किस वक्त हुआ।
देखिए, ये हादसा हुआ है यहाँ सऊदी वक्त के मुताबिक 5:30 के बाद, जो मुसलमान मगरिब पढ़ते हैं उससे थोड़ी देर पहले का ये वाकया है। 8 लाख जो है इस वक्त हाजी दुनिया के कोने कोने से इस वक्त यहाँ पे आज की तारीख तक आ गए हैं, और इतने ही नंबर को अभी आइंदा 9 दिनों में आना है जब हज को शुरू होना है 21 सितंबर से। मगरिब के वक्त का वाकया है कि बहुत तेज जो है हवाएं चलने लगी, इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि जिसको तूफानी हवाएं हम कहते हैं। और चूंकि मक्का एक वादी है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये शहर है, उन तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश होना शुरू हुई। और इसी दौरान जो कई सारी जो क्रेनें लगी हुई हैं हरम यानी ग्रैंड मॉस्क के बाहर, उसमें से एक क्रेन जो है वो टूट कर गिरी है। जो मस्जिद का जो कंक्रीट वाला इलाका था वो बिल्कुल उसको कट करता हुआ, वो मताफ, वो इलाका जहाँ पे लोग तवाफ करते हैं, जो काबा कहलाता है, उसके अतराफ जो तवाफ करते हैं वहां पे भी उसका मलबा आके गिरा और कई सारे लोग उसमें जाँ बाँक हुए। और
ये बताइए सिराज वहाब साहब की आखिर इतना बड़ा क्रेन जो कहा जा रहा है कि लाल रंग का था, वहाँ कर क्या रहा था।
देखिए, असल में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे इस मस्जिद की एक्सपेंशन हो रहा है, और ये एक्सपेंशन का काम जो है पिछले 2 साल से जारी है और आने वाले साल में इसको खत्म होना है। ये बहुत बड़ी एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ये दुनिया भर से जो मुसलमान हज के लिए आ रहे हैं उनकी नंबर जो है हर साल जो है बढ़ता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 10 दिनों से पहले बंद हो गया था। अब आपका ये सवाल है कि वहां पे ये क्रेनें कर क्या रही थी, तो इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है कि जनरली ये जो क्रेनें होती है वो वहीं पे आइडल खड़ी हुई होती है क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं होती, लेकिन उसको वहां से हटाया क्यों नहीं गया था, ये इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है।
हमें एक चीज समझाइए आप हमारे श्रोताओं के लिए कि ये जो मस्जिद जो है, ये जैसा कि हमें बताया गया है कि मक्का में मुसलमानों का जो सबसे पवित्र स्थल है काबा, उसके आसपास ये, आप थोड़ा उसकी ज्योग्राफी जो वो समझा सकते हैं कि कैसे है ये।
देखिए, ये जो एक मस्जिद जो है आम तौर से हम जैसे समझते हैं कि जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, इस तरह की ये मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद ऐसी है कि इस मस्जिद के बीच में सेंटर में जो है बिल्कुल ओपन एरिया है, और ये ओपन एरिया जिसको मताफ कहते हैं, और इसके सेंटर में वो काबा है, काले किस्म का जो क्यूबिक शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं काबा, और उसी काबा के अतराफ हाजी और बाहर से आने वाले तमाम सारे लोग 7 चक्कर लगाते हैं। इस पूरे मस्जिद का मरकज या सेंटर पॉइंट जो है वो काबा है। इसके अतराफ जो है पूरी एक बिल्डिंग यानी 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनी हुई है जो मस्जिद कहलाती है। ये एक तो कवर्ड एरिया है, काफी खासा कवर्ड एरिया है जिसमें कम से कम 1 मिलियन लोग जो है नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहले काबा है सेंटर में, उसके बाद एक ओपन एरिया है जहाँ पे लोग तवाफ करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रक्चर है सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम मस्जिद कहते हैं, और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के बाद एक ओपन कोर्टयार्ड है। अच्छा, मक्का जो है एक पहाड़ों के बीच एक वादी है, एक वैली है, इस वैली के बीच में ये जो काबा है बिल्कुल सेंटर उसका है।
सऊदी अरब के जद्दा शहर से सिराज वहाब, अरब न्यूज के संपादक। और अब सीधे चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने सूबे में गोमांस के बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का हुक्म दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, जाहिर है इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गोमांस प्रतिबंध के लिए मांग के लिए याचिका दाखिल करने वाले जो साहब थे परिमोक्ष सेठ, उन्होंने हमसे दावा किया कि राज्य के 1932 के कानून के मुताबिक गोमांस पर वहाँ पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन आज वहाँ कश्मीर में बंद का ऐलान किया गया है। हमारे साथ हैं BBC संवाददाता रियाज मसरूर। रियाज, ये बताएं कि किन लोगों ने बंद बुलाया है और कितने दिनों के लिए है ये बंद?
जी, ये सभी जो भी धार्मिक संगठन हैं, जो भी अलगाववादी गुट हैं, जो भी NGOs हैं, उन सबों ने जो है एक सामूहिक बंद का आह्वान किया है। और कल जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर दक्षिणी कश्मीर में, उत्तरी कश्मीर में और जो सेंट्रल कश्मीर है श्रीनगर खासतौर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और लोगों ने इसके विरोध में, फैसले के विरोध में काफी प्रदर्शन किया। और आज का बंद जो है कल के प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने आज कम से कम 10 पुलिस थानों के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं श्री
रियाज बसरूर से संपर्क टूट गया हमारा, जैसा कि अक्सर कश्मीर से होता है। और हम देखते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा रियाज मसरूर के पास जाने की, वो आ पाते हैं या नहीं। लेकिन परिमोक्ष सेठ से, जैसा कि मैं बता रहा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने चैलेंज किया था कि जो कानून है 1932 का, उसे क्यों नहीं लागू किया जाए। रियाज मसरूर से संपर्क दोबारा स्थापित हो गया। रियाज, आप कह रहे थे कि 8 थानों में।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है श्रीनगर में जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे सख्त नाकाबंदी है और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। और दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के भी जो इलाके हैं जहाँ कल प्रदर्शन हुए थे, वहाँ भी आज जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल है।
रियाज, जैसा कि आपकी बात से मैं समझ पाया है कि सिर्फ घाटी में ही बंद रहेगा, जम्मू और लद्दाख के क्षेत्रों में ये बंद नहीं रहेगा, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता था कि परिमोक्ष सेठ से जो हमारी बात हुई, जिन्होंने खुद से इस बात को स्वीकारा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनका ये कहना था कि जब उन्होंने अदालत में ये मामला उठाया तो लोगों ने उसको तब क्यों नहीं चैलेंज किया और अब इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं?
जी देखें, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि परिमोक्ष सेठ जो है वो राज्य के डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, यानी स्टेट के लॉ ऑफिसर हैं, और ये पहला मौका है कि किसी लॉ ऑफिसर ने सरकार की पॉलिसी के विरोध में कोई याचिका दाखिल की हो, नंबर एक। नंबर दो, ये बिल्कुल सच है कि 1932 में उस वक्त के जो डोगरा महाराजा थे उन्होंने गौमांस पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया था, बल्कि भारत में भी जो मांग की जा रही है वो सिर्फ 3 साल की कैद है इसके बारे में सजा, और यहाँ जो है ये जो कानून बना हुआ है इसमें 10 साल की सजा और फाइन की बात की गई है, और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि भैंस और बैल की के गोश्त पर भी पाबंदी है, प्रतिबंध है। और रहा सवाल इसके बारे में रिएक्ट करने का, तो जब ये याचिका दाखिल की गई तो इसको बिल्कुल गुप्त रखा गया था, इस किसी के साथ शेयर नहीं किया गया था, किसी मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं आई। जो ही ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने इस तरह से किया और अदालत ने इसमें फैसला दिया है, तो इसमें जाहिर है प्रतिक्रिया जाहिर हो गई।
बहुत बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर पूरी जानकारी के लिए। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों विश्व हिंदी सम्मेलन जारी है पूरे जोर शोर से, और जिसमें कहा जा रहा है कि सूबे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन का भरपूर इस्तेमाल किया है। पहले दिन से ही विवादों में घिर गया है मध्य प्रदेश में जारी विश्व हिंदी सम्मेलन। भोपाल से शूर्य नियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल में चल रहा विश्व हिंदी सम्मेलन शुरुआत के पहले से ही विवादों में आ गया था, जब केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने टिप्पणी की थी कि हिंदी के लेखक शराब पीने के लिए इस तरह के आयोजन में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह के आयोजन से हिंदी का कितना भला होने वाला है। जब ये बात पत्रकार राहुल देव से पूछी गई तो उन्होंने कहा,
कुछ फायदा होता है, मतलब अगर अपेक्षाओं को अपनी हम व्यावहारिक रखें, धरती पर रखें, तो ये अगर हम अपेक्षा रखेंगे या जिनको भी है अगर कि विश्व हिंदी सम्मेलन से हिंदी विश्व भाषा बन जाएगी या संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाएगी या जो उसकी सामने देश के भीतर की जो चुनौतियां हैं वो हल हो जाएंगी, समाधान निकल आएंगे, तो ये अपेक्षा ही गलत है। इसका मतलब है कि वो हिंदी और सारी भारतीय भाषाओं के सामने जो खड़ी चुनौतियां हैं उनकी जटिलता को पहचान हम नहीं रहे।
वहीं सम्मेलन में ऐसी भी बहुत से नौजवान आए हैं जो मानते हैं कि हिंदी की उपेक्षा हो रही है।
मैं भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रहा हूं और मैं बड़ा व्यथित हूं कि आने वाली पीढ़ी में अपनी भाषाएं नहीं जा रही हैं, संस्कृति नहीं जा रही है, जैसे उर्दू है, संस्कृत है, या हिंदी है, या मराठी है, वो सारी भाषाएं धीरे धीरे या तो धीरे धीरे उनका क्षरण हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि हम उनको अंग्रेजी की तरफ मोड़ रहे हैं, जैसे हिंदी की इंग्लिश हो रही है।
तो मेरे को लगता ऐसा है कि मैंने रसायन शास्त्र में MSc किया है, MBA किया है, लेकिन मैं MA हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो महानगरों में देखने को मिलता है कि युवा मुख्य रूप से स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरा मानना यह है कि आने वाला समय वो रहेगा कि कहीं न कहीं स्पोकन हिंदी की कोचिंग लगाना पड़ेगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि हम हिंदी को व्यापार की भाषा बनाना चाहते हैं।
हमें हिंदी को वाणिज्य की भाषा बनाना है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कल को अगर कोई विदेशी कंपनी है वो भारत में अपना सामान जो है वो बेचना चाहती है, तो अगर बेचने के लिए तो फिर बेचने की भाषा जो उस देश की भाषा है, उस प्रदेश की भाषा है, उसी भाषा में उनको करना पड़ेगा।
लेकिन भोपाल के स्थानीय हिंदी के लेखक और साहित्यकारों को पूरी तरह से इस आयोजन से दूर कर दिया गया है। लेखक और इतिहासकार शंभुदयाल गुरु इसी बात से नाराज नजर आते हैं।
ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है और 39 देशों के प्रतिनिधि यहाँ एकत्र हैं, लेकिन जो स्थानीय समाचार पत्रों में जो छप रहा है और पिछले 15 दिन से तैयारी देख रहा हूँ, केवल या तो अफसर दिख रहा है या नेता दिख रहे हैं। आज भी समाचार पत्र में पहले दिन की जो रिपोर्ट छपी है उस सब में मंच पर केवल राजनेता है, एक भी साहित्यकार नहीं।
वहीं इस आयोजन को करीब से देखकर यही महसूस होता है कि इस सम्मेलन में आमंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि संघ से आपके रिश्ते हों।
BBC इंडिया बोल।
भोपाल का 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, हिस्सा ले रहे हैं करीब 5000 प्रतिनिधि। चर्चा हिंदी की दशा और दिशा पर। शामिल हैं अमिताभ बच्चन से लेकर कई बड़े बुद्धिजीवी, लेकिन कई ऐसे साहित्यकार हैं नदारद जिन्होंने हिंदी को बहुत कुछ दिया। सवाल है कि क्या इस तरह के सरकारी सम्मेलनों से हिंदी की दशा और दिशा सुधरेगी। शनिवार को BBC इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय, लेकिन 7:30 बजे नहीं बल्कि 9:30 बजे घटना चक्र के वक्त। राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो इंडिया बोल में जरूर शामिल होइए और स्टूडियो में मौजूद हैं अमल चौधरी अखबारों के पुलिंदे के साथ। अमल, अखबार क्या कर रहे हैं भारतीय?
जी, आज के मुख्य अखबारों के पहले पन्ने की बात करें तो सभी जगह या तो मुंबई में 2006 में जो लोकल ट्रेनों में जो बम धमाके हुए थे उसकी खबरें हैं, या फिर मुंबई और छत्तीसगढ़ इन जगहों पर जो मीट बैन के जो मीट प्रतिबंध जो कम हुए हैं या फिर उसकी खबरें हैं
मांस पे।
जी, सबसे पहले अंग्रेज़ी अखबारों का रुख करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है मुंबई धमाकों के लिए 12 दोषी। वहीं मीट पर प्रतिबंध कम किए जाने की खबर पर उसने लिखा है अब मीट बैन पहुंचा छत्तीसगढ़ और लुधियाना। इंडियन एक्सप्रेस का
लुधियाना मतलब पंजाब।
जी, वहाँ पे भी उन्होंने मीट बैन कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है 7-11 मुंबई धमाकों में कोर्ट ने 13 में से 12 लोगों को सजा दी। द पायनियर लिखता है मुंबई को मिला मीट। द स्टेट्समैन लिखता है 2006 मुंबई धमाकों के लिए 12 दोषी। वहीं द हिंदू ने शीर्षक दिया है कि 12 को 7-11 धमाकों के लिए दोषी ठहराया
गया। 7-11 का जो फैसला है वो बिल्कुल
बिल्कुल प्रमुखता से छाया हुआ है हर जगह वहाँ पर। और वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है भारत में दूसरे सबसे खतरनाक आतंकी हमले में न्याय, इसमें 188 लोग मारे गए थे। हिंदी अखबारों का रुख करते हैं तो NBT ने लिखा है 7-11 ब्लास्ट में 12 ही गुनहगार। दैनिक जागरण का शीर्षक है 9 साल बाद दोषी करार। दैनिक भास्कर ने लिखा है 9 साल बाद आया फैसला, 12 दोषी 1 आरोपी बरी। जनसत्ता ने लिखा है 13 में से 12 दोषी करार। हिंदुस्तान हिंदी लिखता है कि मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 दोषी। हालांकि अमर उजाला ने भी इन खबरों को लिया है, लेकिन उसकी मुख्य खबर मक्का में जो भी हादसा हुआ है उस पर ही है,
जिसे हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
जी बिल्कुल। और अखबार लिखता है हद से पहले मक्का में बड़ा हादसा, 87 की मौत। अन्य अखबारों
जबकि अब वो 107
पहुंच गया, लेकिन अमर उजाला की खबर के अनुसार अभी वो 87 चला रहे हैं,
तो पहले छपने के लिए।
जी बिल्कुल। और अन्य खबरों की बात करें तो मोदी का सोनिया और राहुल पर हमला, दिल्ली सचिवालय में फेसबुक और ट्विटर बैन कर दिया गया है, वो खबर भी है। और अतिरिक्त अरहर दाल का आयोग करेगी केंद्र सरकार, इसको भी खबर को लिया गया है इसमें।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए अमल चौधरी, और अब देखते हैं कि किन किन मुख्य खबरों पर रहेगी हमारी नज़र।
जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टीनमर, फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फाबियास, रूसी विदेश मंत्री सर्गी लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री पावलो क्लिमकिन यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच शनिवार को वार्ता जारी रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास की याद में चेन्नई में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। 23 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिंग करेंगे। अमरीकी प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर का आज आखिरी मैच है। मेवेदर यह मैच लास वेगास में आंद्रे बर्टो के खिलाफ खेलेंगे। वो अब तक अपने करियर के 48 मैचों में अपराजित रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फिलीपींस के मैने पैकिया उसे फाइट की थी, जो फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कही गई थी। यूएस ओपन में शनिवार को महिला वर्ग का फाइनल है, जो इटली की रॉबर्टा विंची और इटली की ही फ्लाविया पेनेटा के बीच होगा। वहीं पुरुषों के युगल वर्ग का फाइनल भी खेला जाएगा। इस मैच में ब्रिटेन के जेमी मरी और ऑस्ट्रेलिया जॉन पियर्स का मुकाबला फ्रांस के पियर हक्स हर्बर्ट और फ्रांस के ही निकोलस महूत के बीच होगा।
और अब खेल समाचार। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने यूएस ओपन के मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। चलते हैं सीधे न्यूयॉर्क सलीम रिजवी के पास। सलीम, लगातार एक और जीत।
जी फैसल, लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने इस साल ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और इस तरह इन्होंने ये इतिहास रच दिया है। सन 1969 के बाद ये पहला मौका है कि किसी जोड़ी ने 3 लगातार एक साल में खिताब जीते हों ग्रैंड स्लैम के। पेस और इंगिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन इससे पहले जीता था, और ये अमरीकी जोड़ी थी इनके खिलाफ, जिसको कि एक संघर्षपूर्ण मैच तो नहीं लेकिन बड़ा रोमांचक मैच था। 6-4 से पहला सेट जीते पेस इंगिस, फिर 3-6 से हार गए, लेकिन तीसरे जो सुपर टाई ब्रेक में था 5-1 से ये पीछे चल रहे थे। अमरीकी जोड़ी आ गई थी 5-1 से। फिर काफी अनुभव और जो बेहतर तालमेल का फायदा उठाते हुए पेस और इंगिस ने 10-7 से सुपर टाई ब्रेक जीत के इसको खिताब अपने नाम कर लिया। तो ये जाहिर है कि 42 साल के लिएंडर पेस का 17वां खिताब है, और जो मार्टिना हिंगिस हैं जो 34 साल की हैं उनका ये सिंगल्स और डबल्स मिला के 19वां खिताब है। जबकि मार्टिना हिंगिस अभी आपको याद है कि सानिया मिर्जा के साथ फाइनल खेल रही हैं महिला के डबल्स में भी, तो वो भी रविवार को होना है। उधर यहाँ यूएस ओपन में जो सिंगल्स था महिलाओं का, उसमें एक बड़ा उलटफेर हुआ और अमेरिका के जो टॉप सीड खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, उनको एक अनसीडेड खिलाड़ी इटली की रॉबर्टा विंची ने मात दे दी। 3 सेट में चला मैच उनका, और अब वही रॉबर्टा विंची इटली की फ्लाविया पेनेटा के साथ खेलेंगे फाइनल। और जो मेंस का सिंगल्स आज हुआ है, 2 सेमीफाइनल, उसमें नोवाक जोकोविच ने मारिन चिलिच को हरा दिया सीधे सेटों में, और उधर रॉजर फेडरर ने भी अपने ही देश के स्टैन वावरिंका को सीधे सेटों में हराकर अब दोनों फाइनल में प्रवेश कर गए हैं और दोनों की खिताबी बुलंद होगी।
तो अब मतलब रविवार का इंतजार रखना चाहिए भारतीयों को कि शायद कुछ और मिले।
जी जरूर, एक खिताब की अभी भी उम्मीद बिल्कुल बरकरार है।
बहुत बहुत शुक्रिया सलीम रिजवी पूरी जानकारी के लिए। और अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चला है। भारत के लिए भी साल का ये आखिरी टूर्नामेंट शानदार रहा। भले ही पुरुष एकल वर्ग में भारत की चुनौती किसी भी रूप में नहीं थी, लेकिन महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी के रूप में खेल रही सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन बर्जिया क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। और अब बात क्रिकेट की। पिछले दिनों श्रीलंका से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर इन दिनों आराम कर रहे हैं। दरअसल भारत को आगामी क्रिकेट सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, वो भी अपनी ही जमीन पर। दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत में 3 20-20, 5 एक दिवसीय और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। 20-20 और एक दिवसीय मैचों की सीरीज से पहले भारतीय चयन समिति ने 30 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों का चयन अभ्यास के लिए किया है, जिसमें चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। वैसे इन खिलाड़ियों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, कर्ण शर्मा, मनीष पांडे के नाम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने भारत दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टेस्ट मैचों में टीम की कमान हाशिम आमला, एक दिवसीय सीरीज में एबी डिविलियर्स और 2020 सीरीज में फेफ डु प्लेसिस संभालेंगे। उधर लीड्स में अंतिम ओवरों में मोइन अली के नाबाद 21 और डेविड विले के नाबाद 12 उपयोगी रन की मदद से इंग्लैंड ने चौथे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात दी। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए पूरे 300 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 48.2 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। इंग्लैंड के कप्तान यान मॉर्गन ने भी 92 रन बनाए। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली है। और अब बात बैडमिंटन की। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती कल तब पूरी तरह समाप्त हो गई जब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पी कश्यप 6वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चोउ तियन चेन से 41 मिनट में 21-14, 21-18 से हार कर बाहर हो गए। इससे पहले महिला एकल वर्ग में भारत की साइना नेहवाल दूसरे दौर में ही जापान के मिनात्सु मितानी से, पुरुष एकल वर्ग में एचएस प्रणय कोरिया के ली ड्यून किम से और तीसरी वरीयता हासिल के श्रीकांत तो पी कश्यप से ही हार कर बाहर हो गए थे। महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु और महिला युगल वर्ग में अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा पहले ही दौर में हार कर बाहर हुई। और अब बात कुश्ती की। अमेरिका में जारी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आज पुरुष वर्ग में 57 किलो भार वर्ग में भारत के अमित कुमार, 70 किलो भार वर्ग में अरुण, 74 किलो भार वर्ग में नरसिंह यादव और 125 किलो भार वर्ग में सुमित अपनी चुनौती पेश करेंगे। फ्री स्टाइल वर्ग में इससे पहले भारत को तब बड़ा झटका लगा था जब लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त 65 किलो भार वर्ग में घुटने की चोट के कारण मुकाबलों से ही हट गए। इतना ही नहीं, महिला वर्ग में भी तमाम भारतीय पहलवानों ने निराश किया। साल 2012 में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता गीता फोगाट, 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश और रजत पदक विजेता ललिता सहरावत कोई करिश्मा नहीं कर सकी। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
क्या थोड़ी सी शराब पीना वाकई फायदेमंद है? आइए bbchindi.com पर और पढ़िए खबर की, क्या शराब पीना फायदेमंद है या नहीं। और अब सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। सऊदी अरब के शहर मक्का में शुक्रवार दिन में हुए हादसे में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है, जबकि 240 लोग घायल हैं। मशहूर अल हरम मस्जिद की छत पर क्रेन के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने कहा है कि यूरोपियन संघ को सीरिया की आर्थिक मदद करनी चाहिए और उसे $3 अरब यानी कि करीब 75 अरब रुपए देने चाहिए। कर्नाटक के गुलबर्गा में हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 घायल हैं। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने यूएस ओपन के मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने ये मैच 6-4, 3-6, 10-7 से अपने नाम किया। लिएंडर पेस के लिए ये 17वां खिताब है। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने उससे अपील की है कि वो उसे पूर्व राष्ट्रपति लुइस इंसियो लुला डा सिल्वा से पूछताछ करने की इजाज़त दें। डा सिल्वा पर आरोप है कि वो सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार में शामिल थे। सर्बिया की सीमा के नज़दीक हंगरी के रोश्की शरणार्थी शिविर में प्रवासियों से अमानवीय व्यवहार का फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहा है कि शिविर में शरणार्थियों पर खाने से भरे बैग फेंके जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। फिलहाल फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दें इजाज़त। विश्व भारती में फिर से हाजिर होंगे ताज़ा समाचारों और विश्लेषणों के साथ, और आपको सुनवाएंगे 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की एक और कड़ी।